نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت ہم اس میں غزوہ احد اور اس کے جو سیکوینسز تھے یعنی جو ایفیکٹس تھے جو امت مسلمہ پہ اور ارد گرد کے لوگوں پہ ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے اس میں ابھی تک جو چیز دیکھی ہے اور وہ کیا ہے پہلی بات ہے کہ کوئی کتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کر چکا ہو جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس کا بھی محاسبہ کرتے ہیں لیکن بعد میں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے یاد رکھیے گا کہ کسی سے سوال جواب کرنا یا اس کو دی گئی ذمہ داری کے بارے میں پوچھنا یہ کوئی اس کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ اس کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ تمہیں ذمہ داری دی تھی اور یاد ہے کہ تمہیں دی تھی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا محاسبہ تو کیا لیکن پھر ساتھ ہی اپنے نبی کو کیا کہہ دیا کہ شاور ہم فی الامر کیا آپ ان کو آئندہ کاموں میں بھی شامل کرتے رہیے اور ان کو پیچھے نہیں کرنا آپ نے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں اب دوسری چیز ابھی ہم نے اس حصے میں کیا سیکھی تھی غلطی سب سے ہوتی ہے کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ میرے سے غلطی نہیں ہوتی تو اس سے بڑی نہ سمجھی کی بات ہے ہی کوئی نہیں غلطی صرف اس سے نہیں ہوتی جو کام نہیں کرتا آپ اپنی ماسی سے کہیں میرے سے تو آج تک ایک برتن نہیں ٹوٹا تو اگر بیچاری ہوگی ذرا سی فیل بدی تو کہے گی باجی آپ نے دھوئے کتنی دفعہ جو برتن ہوتا ہے اسے برتن ٹوٹتے ہیں نا بالکل اسی طرح سے کام کرنے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں پھر تیسری چیز جو ہم نے ابھی تک سیکھی ہے اس میں سے مورلز اینڈ لیسنز وہ کیا ہے کہ غلطیوں کے بعد اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں کی ہمت ٹوٹ جائے تو اللہ نے پھر نبیوں کے ساتھیوں کی مثال دے کر ادھر بتا دیا کہ ولا تہنوا غم نہیں کرنا سستی نہیں کرنی اور وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ تھے ان کی کیا خوبیاں تھیں جی اس پہ ہی ختم ہوئی تھی ایک ایک بولتے جائیں فما وہنوا وہن نہیں آیا اور دوسری دعفو زوف نہیں آیا اور استکانو ڈگمگائے نہیں بہت سارے لوگ حالات کے اتار چڑھاؤ میں ڈگمگا جاتے ہیں ایون یہ احد میں نہیں ہوتا یہ دین کے کاموں میں بھی ہوتا ہے آج ہمارا دین تو یہی ہے نا لوگوں تک دین پہنچانا آپ ایک درس کریں بہت اچھا رزلٹ بہت سارے لوگ آرگنائزڈ اینڈ پہ کتنے ہی لوگ مسلمان ہو گئے مراجعہ کے قرآن پڑھ لیا رجسٹریشن کرائی اس دن دیکھیے ذرا جو ٹیم کا مورائل ہوتا ہے اور جو چہروں پہ چمک اور ہر بندہ بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا لیکن خدا نخواستہ اس سے معاملہ ذرا سا اپوزٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اس کو بھی یہاں ٹیکل کیا گیا ہے کہ مومن فتح اور شکست سے اوپر اٹھ کے کام کرتا ہے جیت گئے تو جیت گئے ہار گئے تو بھی مات نہیں یہ بازی ایسی ہے کہ اس رستے میں آ کے کھڑا ہو جانا یہی بہت بڑی نعمت ہے بس اس کے بعد جو بھی ہوگا کم ہے زیادہ ہے آگے ہے پیچھے ہے اس کو اللہ پہ ڈال دیا کریں علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے بہت ہی خوبصورت اس کا مفہوم ہے کہتے ہیں کہ جو میں کر سکتا تھا زندگی میں کر دیا یعنی مجھے کم و بیش کا حساب نہیں آتا تو جان تیرا معاملہ جلے مطلب میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کر دیا سمجھے کم و بیش را کا لفظ آتا ہے اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں تو جان تو علیم ہے تو حس محاسب ہے تو حسیب ہے تیرے ہاتھ میں ہے تو گن لے کہ میں نے نیکیاں زیادہ کی کہ مجھے کچھ نہیں پتا بس میں جو کر سکتا تھا وہ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے کس پوائنٹ سے پڑھنا ہے بولیے سب مل کے پوائنٹ نمبر 7 سے پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے کس بے جگری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا یہ باتیں پڑھ کر تو واقعی بندے کو اپنا آپ ذرا سا دکھتا ہے نا ہے کہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی تھی چلے آپ چند سیکنڈ سوچیں کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن سکتی تھی کیا میں اپنا ہاتھ سامنے رکھ کے اس پہ تیر کھا سکتی تھی کہ اللہ کے نبی کو تیر نہ لگے مجھے لگ جائے کیا میں اللہ کے نبی کی جان کو بچانے کے لیے اتنی حریص تھی کہ باپ بھائی بیٹا ان کی موت کی خبر آ رہی ہے اور پوچھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں یہ ڈھونڈنا ہے اپنی ذات سے اوپر اٹھ جائے نا بندہ تو اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے آج ہم بہت سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں इतना ज्यादा अपनी जात से हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी जात पर रोना आ रहा होता है, मेरे पास कमरा नहीं है अलग, मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे करूं। मतलब हर चीज में बंदा अपनी इंपॉर्टेंस चाहता है। सहाबे कराम जो थे ना, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं थे, अपने ऊपर ही रहम खाने वाले दीन का काम कभी नहीं कर पाते, ये लिख लें अपने लिए। बज़ाहर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से देखें ना, तो अपनी ज़ात का बुत होता है। मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मेरे हालात ऐसे क्यों हैं, मैं बहुत कुछ करूंगी, बस एक दफ़ा मेरे हालात ठीक हो जाएं। बैठे आपने नहीं करना, आपको खुशियों ने भी नहीं आने देना अगर आज आपको गम नहीं आने दे रहे, आपको शहनाइयों ने भी नहीं दीन पे आने देना अगर आप आज तन्हाइयों में नहीं हैं। आज दुखों में अगर आपको अल्लाह की किताब सुकून नहीं दे रही, तो कल खुशियों में आपको तो याद ही नहीं रहना। तो हमेशा के लिए एक बात रखें, हर किस्म के हालात में, हर जगह। वो जिसको एक पाकिस्तान का एक मिली नगमा बहुत अरसा पहले टीवी पे चलता था, हर घड़ी तैयार कामरान कामरान। हमारा भाई छोटा है, उसका नाम कामरान है, जो छोटा था, बेबी था, बेबी जमरात के जी। तो जब ये लगता था ना कि नशी, तो हम सारे उसको देखते कि इसके हर घड़ी तैयार कामरान कामरान। तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत में वो गाते हैं ना, इस रास्ते में भी यही मिशनरी जील रखे है। तो है, बाद में निपटेंगे, अपना हाल बाद में पूछूंगी, पहले दूसरों को पूछ लूं। और आप देखिए कि अबू दुजाना ने किस तरह से अकड़ से चलकर दुश्मनों को दिखाया हम कमजोर नहीं है। अच्छा, ये भी एक बड़ी अहम बात है, ये भी नोट करें, हर उरूज को जवाल है। जैसे अभी देखिए पत्ते उतर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह 5-6 माह में फिर लगने शुरू हो जाएंगे। ये अरूज और जवाल की दास्तान है। ये दरख्त अपनी जड़ पे कायम है ना, तो दोबारा आ जाएंगे। कोई नहीं हमसे ये तकाजा करता हम हर वक्त ईमान के आला दर्जो में रहे, कोई नहीं आपको ये कहता कि आपके अंदर हर वक्त खुशू खुदू वरा तकवा, और आप हर वक्त नमाजी रोज़ेदार और तहज्जुद गुजार और लोगों की खिदमत करने वाले। ये नहीं होता। साहबा को भी देखिए, उनकी वजह शोहरत कोई एक नेकी बन जाती है। मैं अल्लाह से अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह मेरे से कोई एक ऐसा काम करा ले जो बस मेरी निजात का जरिया बन जाए। कई दफ़ा आप देखिए जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना, कोई उनका एक सॉन्ग मशहूर होता है, उनको फेमस कर देता है, कोई एक करेक्टर होता है, वो करेक्टर फेमस हो जाता है। ये दुनिया की बातें हैं ना, दुनिया में तिजारत में। आप देखिए, मैं उसी पढ़ रही थी, किसी का नाम गलत, नेपोलियन पोस्टमैन था, एक वक्त था पोस्टमैन था, लोगों के घरों में पोस्ट डालता था। एक ऐसा उसकी ज़िंदगी में वाकया आया कि वो इतना बड़ा इंसान बन गया। तो आपसे मेरे से कोई बहुत बड़ी तवक्कात नहीं है, अपने आपको तसल्ली दिया करें। ये जो हर वक्त कॉम्प्लेक्स और गिल्ट में रहना ना, हमसे होता नहीं, हमें आता नहीं, हम कर नहीं सकते, हमसे तो कुछ ठीक नहीं होता, ये शैतान का धोखा होता है। ये वहन पैदा करता है, सुस्त करता है, ताकि जो कर रहे हो वो भी छोड़ दो। कर रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे अच्छे हैं जो नहीं कर रहे। हाँ, नुकसान और खतरा किसका है, खतरे में कौन है कि जो बैठ जाता है। कर सकता है एक बंदा काम को, लेकिन करता नहीं है। क्यों नहीं करता भला? अभी हालात ठीक नहीं है मेरे, अभी मेरी ज़िंदगी में सही वक्त नहीं आया। क्या अल्लाह के नबी और सहाबा के ये सारे हालात पढ़ के आपको लग रहा है कि बहुत राइट एंड गुड वे था, टाइम था जो करने का था काम? आपसे मुझसे मेरा आपका दी बेस्ट मांगा जाएगा, जो तुम कर सके। आपकी छोटी बच्ची है 4 साल की, 5 साल की, आप रोटी बनाती हैं, मामा मैंने भी बनानी है। पहली बच्चियां ऐसी होती थी, अब का तो मुझे नहीं पता कि मामा भी पकाती है कि नहीं पकाती, लेकिन चले हमने खुद ये किया हुआ, मैंने भी बनानी है। तो माँ क्या करती थी, इतना साटा दे के ना छोटे से प्लेट में डाल के खुश कर लो, तुम भी पकाओ। अब मुझे बताएं, वो आपके साथ बैठी है, रोटी बेल रही है, खा रही, वो क्या रोटी वैसी बनेगी जैसी आपकी है? तो क्या माँ तसव्वुर करती है, ये माँ ये एक्सपेक्ट करती है कि गोल मटोल एक जैसी फूली हुई फुटबॉल बनी रोटी बनाएगी? वो बनाएगी तो माँ परेशान हो जाएगी? अल्लाह भी हमसे ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है। इन्होंने करना ही टूटा फूटा, इनसे होना ही ऐसा, कर लो जिन्ना जोर लाना ला लो, होना फिर कोई नहीं। यही चीज आपसे आगे काम लेगी। कभी अपने ऊपर तरस ना खाएं, कभी अपने आप को लेट डाउन ना होने दें। इतना ये गज़वे ओहद का मुझे लगता है, अगर सारा कुछ छोड़ दूँ ना, तो बस ये एक चीज़ रख लें कि थे तो साथ ना, 300 में से तो नहीं थे जो पलट गए। आप ज़रा सोचें, मैं इसको एक और एंगल से समझना चाह रही हूँ। आप देखिए, अगर वो 300 साथ होते तो बज़ाहर क्या था, 1000 हैं, ये झटका फिर भी पड़ जाना था। और अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़े बोल से बोलूँ, अल्लाह ने तौबा पोल उनके पहले ही खोल दिए हैं। वो ना पता क्या था, अगर ये 307 तक रहते भी ना, तो वो जिस दिन भगदड़ मची थी ना, वो भगदड़ जो थी ना, वो कोई 30 गुना ज़्यादा होनी थी। ये 300 तो जा ही किसी और दिल से रहते। वो तो बेचारे थोड़े से गलती कर चुके थे, लोग जो भी साथ थे उनमें से कुछ इज्तिहादी गलती, ऐसे यानी 1/3 ऑफ जमात, किसी जमात का 1/3 पार्ट जो है वो ही अगर मुनाफिक हो, तो मुझे बताएं कि वो तो खा जाते उसको, जिसको वो ज़ुबान में अपनी कहते हैं, ये तो सारे स्कूल को खा जाते, ये तो मस्जिद को खा जाते, ये तो अपनी झोलियाँ भरते, समझ रहे ना। ऐसे लोगों का फिर अलग हो जाना बेहतर था। अल्लाह ने असल में सहाबा और नबी सल्लम को एक बड़ी तकलीफ़ से बचाया, क्या वक्त से पहले ही उनको फ़र्क कर दिया। ये भी लिख लें, अल्लाह बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को आपसे अलग कर देता है। अब इसमें आप ये ना सोचें, हाँ फ़लां भी था वो अलग हो गया, या फ़लां भी था अब नहीं आ रहा। मैं सच्ची बात कर रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि दिलों में आता है। नहीं, किसी का अपनी मजबूरी के नाम पे रहना अलग और बात है, अपनी सुस्ती के बायस रहना बिल्कुल और बात है, सहल पसंद हो जाना, आराम तलब होना और बात है, और मुनाफ़िकत से अलग होना ये बिल्कुल फ़र्क पाता है। सुस्त लोगों को भी अल्लाह वापस ले आता है, सहल पसंद भी काफ़ी आराम करके थक जाते हैं, और ऐसे ही लेयर मूड, केयरलेस एटीट्यूड आ जाते हैं। मुनाफिक जो है ना, उसको तो फिर अल्लाह रोगी बना देता है। तो अल्लाह ना करे कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी मुनाफिक हो। सिर्फ ये एक रूटीन छूटती है ना, हमारी रूटीन आज छूटे तो देखिए कल आना कितना मुश्किल है। रोज़ आना आसान है, हफ्ते में 5 दिन आना आसान है, 1-2 दिन आना मुश्किल है। ग़ज़वे उहद तो मुझे लगता है कि एक पूरा ट्रेनिंग सेशन है। मैंने आज के सेशन का नाम ही ये लिखा है कि उहद एक ट्रेनिंग सेशन था। आप अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाएं, अगर अल्लाह ने आपको अभी तक खड़ा रखा हुआ है ना, अल्लाह ने आप में खैर रखी हुई है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैं ख़ुद सोचती हूँ कि जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा है, और जो खाना काबा में इस वक्त जितने लोग आते हैं, क्या सहाबा कराम ने इसका कभी तसव्वुर भी किया था? बिलाल ने कभी सोचा भी था कि इस काबा में आने के लिए मुझे कितनी चोटें पड़ती हैं? क्या ये काबा कभी दीवानों से और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें लगाने वालों से इस तरह गूंज रहा होगा? आप सोचें। हाँ, और आज के दौर में जबकि हम कहते हैं कि दिल में खोट ही बड़ा है, ये खोट नहीं भी है तो खुब्बे दुनिया भी बड़ी है, हैं? इसके बावजूद आज भी मक्का, खाना काबा, मदीना भरा रहता है। सहाबा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये उनके लगाए हुए बूटे थे, उनके लगाए हुए पौधे थे। यकीन करें, भी सिर्फ अलबरका का नाम अलबरका है, इतने अल्लाह की तरफ से इशारे और ख्वाब हैं, और हर ख्वाब के अंदर ये कि ये बुनियाद पड़ रही है, ये बेस है आपका, असास है। अब कोई ख्वाब तो अपनी मर्जी से नहीं बयान करता ना, और अल्लाह ना करे कोई झूठा ख्वाब बयान करे। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज की कोशिशें करने वाले, उनको क्या पता कल क्या होगा। काम सही करें, दो चीज़ें देखिए, इखलास लिल्लाहियत और तरीका दुरुस्त हो, ये दो है दुनिया में कामयाब ऑर्गेनाइजेशन के स्लोगन। करना अल्लाह के लिए इखलास है, अपने आप को देखिए, नीयतें क्या हैं, इरादे क्या हैं, अल्लाह ही का नाम में फ़ी सबील अल्लाह ही है, या फ़ी सबीली जमात है, या फ़ी सबीली गिरोह है, या फ़ी सबीली नूरुल कुरान है। फ़ी सबील अल्लाह नहीं है ना, तो बात नहीं बनेगी। फिर वो लोगों की मोहब्बतों का रुख आपकी तरफ तो जुड़ जाएगा, लेकिन अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे। हर दर्स के बाद मैं अपने आप से पूछती हूँ वल्लाही कि आज के इस दर्स को सुन के आने वालों को फ़ायदा क्या हुआ है, और दूसरी बात है कि वो किस से जुड़े हैं। और अगर किसी दर्स के बाद कुछ ज़्यादा ही लोग ये कह दें ना आज बड़ा मज़ा आया, तो वल्लाही मुझे अपने ऊपर फिक्र लग जाती है कि आज मैंने कोई सिर्फ मज़े वाला ही दर्स दे दिया, या इनको कोई फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा की ज़रूरत है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये चीज़, आपका मेरा और मैं अपने ऊपर भी इस पर अल्लाह का शुक्र करती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा एहसान और दुनिया की सबसे ज़्यादा नेमतें अल्लाह की मेरे ऊपर है। आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, मुझे फील होता है। क्यों? कि मेरे पास इतने प्यारे साथी हैं, हर जगह, हर स्टेशन पे लोग जिन जगहों पे जाने के लिए तरसते हैं, हमें लोग बुलाने के लिए तरसते हैं। किसी ने मुझे ऐसी कोई बात की, आपका घर किधर है, ऐसी कोई नई थी, नई नई सिस्टर, लोगों को बड़े तजस्स होते हैं। मैंने कहा हमारा एक घर अमेरिका में है, हमारा एक घर नॉर्थ, अच्छा वहाँ अपना है, कितना बड़ा है। तो फिर ऐसी बात हुई, मैंने कहा हमारा एक घर इंग्लैंड में भी है, और हमारा घर पेरिस में भी है। तो कहती अच्छा, इतने घर हैं आपके। अब लोग फिर आगे से पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछते नहीं हैं कहाँ से लिए हैं, कैश पे लिए हैं कि कैसे लिए हैं। फिर ऐसे ही कोई बात हो गई, तो गाड़ी की बात हुई, तो मैंने कहा हमारी एक गाड़ी अमेरिका में है, हमारी एक गाड़ी कनाडा, हर मुल्क में एक एक गाड़ी है। लोग समझ ही नहीं पाते। और मैं अक्सर कहती हूँ सामा को कि देखें, लोग प्लान करते हैं हस्बैंड्स के पीछे पड़ के, या बच्चे बाप को कहते हैं बाबा हमें कहीं ले जाएं, 1 साल प्लान करेंगे, फिर कहीं जाके 15 दिन डिज्नीलैंड जाएंगे ना। कम से कम भी अगर यहाँ से कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क का बच्चों के साथ अगर प्लान करें, या अपने भाइयों से सुना हुआ, लाखों का खर्चा, यानी पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ गर्मियों में ये अपने ही मुल्क में मरी वगैरह बच्चों को लेकर भाई गए, तो वैसे ही बातों में बात हो रही थी कि कई लाख रुपया लगा है सिर्फ एक छोटे से ट्रिप का। लगता है ना, अल्लाह जानता है ये अंदर की बात है, कभी पर्स भी नहीं खोला, हमारे पास पैसे ही नहीं होते, कार्ड है इनके पास, मुझे क्या लगे उससे, ज़रूरत नहीं ना पड़ती। अगर हमें भी जाती एयरपोर्ट से टैक्सी लेनी पड़े तो पहले जेब में देखेंगे, कई दफ़ा वो करेंसीज पूछते हैं ना, तो मैं हंसती हूँ। मेरे पर्स में मैंने एक छोटा पर्स ऐसा बनाया हुआ है, आज आपको सारी दुख सुख दे रही हैं अपने, तो वो एक पर्स ऐसा है मेरे पास जो एक्स्ट्रा कॉइन्स, हर मुल्क का जो बचे खुचे कॉइन्स, क्योंकि कुछ मुल्क ऐसे हैं वहाँ ट्रॉली डालने के लिए ना कॉइन्स डालते हैं, ये यूरोप में अक्सर ही कॉइन्स डालते हैं, और इस तरह कोई मेरे पास कोई बचे खुचे किसी मुल्क में गई कुछ अगर रखा लिया दिया, कोई 5 6 छोटा नोट जो कि चलता नहीं, कोई डॉलर का है या कोई यूरो का है, पाउंड का है, जो एंड पे आखिरी कोई ऐसी करेंसी, तो वो मेरी उसमें छोटी मोटी पड़ी होती है, कभी वो भी नहीं होता, पर्स भी नहीं पास होता, एक पैनी नहीं होती उस मुल्क के पैसों की, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। वजह क्या है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी जगहों पे रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में जाते हैं, अच्छा खाते और प्यार और मोहब्बत, और हर जगह जाते वक्त ऐसे ही लग रहा होता है कि यहीं जाने की सबसे ज़्यादा खुशी है। ये अल्लाह के दीन की बरकत है, अल्लाह की कसम, इसमें ना आपकी खूबी है ना मेरी खूबी है, ये अल्लाह का दीन है जो लोगों को बुलाता है। और मैं अक्सर अपना मुहासबा करती हूँ कि लोग जितनी एफर्ट करते हैं हमें बुलाने की, क्या हम उनको उतना फ़ायदा देकर आते हैं। मैं जब जाती हूँ, अब 4 5 दिन का ट्रिप होता है, अक्सर ही आपके सामने जा रहे हैं, अमूमन थर्सडे से संडे एक स्टैंडर्ड है, थर्सडे क्लास के बाद जाना, संडे रात को आना, कभी उसमें टिकट सस्ती महंगी देखते हुए 1 दिन आगे पीछे हो जाता है। एक एक मिनट में सोचती हूँ कि इन्होंने जितनी एफर्ट की है, जितने दर्स रखे हैं, जितनी लोगों को अलर्ट किया हुआ है, क्या हम उनको इनका इनपुट दे के आ रहे हैं। और यही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों को भी होती है कि अब हम आए हैं, तब ये नहीं कि हम अपने मूड में बैठे हैं जी हम तो घूमने आए हैं, घूमते भी हैं, ये भी नहीं कि घूमते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करता है बंदा के करे, तो ग़ज़वे ओहद को अपनी टीम्स के साथ शेयर करें। मैं कहती हूँ ये सोए हुए ईमान को ऐसे ज़िंदा कर देती है जैसे ये सोई हुई बेलें फिर ज़िंदा हो जाती हैं, और ये हमारा अपना ईमान भी डोरमेंट होता है। आप देखिए, एक चीज़ होती है लेकिन छुप जाती है, ईमान अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतने साल से हम दीन के साथ जुड़े हुए ना, वो कहते हैं यूज़र फ्रेंडली हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें चैन कहाँ आता है, सच बताएं, क्लास में ना आए तो चैन आता है, यहाँ आकर अपने आप को बैठ कर चाय आगे या चाय पानी पी के चले जाएं, मज़ा आता है कि नहीं आता। अल्लाह ना करे हम में से कोई इसके बगैर मुतमईन हो जाए, है इसी शहर में और उसका दिल लग जाए इसके बगैर। ये तो ऐसे ही है कि जैसे शहर में आपके माँ बाप है और आप उनको मिलने ही नहीं जा रहे, आपका मैका है शहर में और आप उधर जा ही नहीं रहे, कैसी बेटी हैं आप, आपकी बहन सगी रहती है इस शहर में और आप उसको मिलने ही नहीं जा रहे, ये फिर अननेचुरल है। आके आप कुछ करें ना करें डांट ही पड़ती है। आप देखिए, आज भी 2 लोग हैं दुनिया में जिनको मैं कहती हूँ मुझे डांटते हैं, एक तो मेरी माँ है, मैं कहती हूँ अगर मुझे भी कोई ना डांटने वाला तो कोई हो, और एक और है, उनका स्टाइल ही असल में बात करने का ऐसा, उड़ जाओ चल जिक्र है, तो मैं कहती हूँ मेरी माँ के बाद आप सबसे ज़्यादा मुझे डांटती हैं, क्या मतलब है, स्टाइल होता है एक, मुझे पता है उनके दिल में प्यार है, वो कोई बुरी, लेकिन कई दफ़ा उनकी बातें मैं सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करती हूँ कि बहुत अच्छी बातें भी तो उनमें ही है ना, अल्लाह उनसे भी तो खैर के काम ले रहा है ना। तो हमेशा याद रखे ये एक इतनी प्यारी छांव है, इसके नीचे आए तो पता चलता है ये अल्लाह का अर्श का साया बन जाती है, एक वक्त आएगा दुख सुख गम परेशानियों से आपको बेनियाज करती है। तो एक छोटी सी बात करके 7वें नुक्ते को शुरू कर लेते हैं, हर एक के कामों में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तहरीक ही थी ना, हर तहरीक में एक दफ़ा ओहद ज़रूर आती है। शुरू की थी ना बात, तो बताया था कि ओहद इज़ द ओनली वॉर दैट मेक द सिंबल ऑफ डिफीट, सिवाय ओहद के किसी जंग में ना नबी को कभी शिकस्त हुई ना सहाबा को। ऊपर हल्की फुल्की झड़पें, इधर उधर कुछ हो गई, कभी उनका मारा गया कभी मारा गया, ये तो जंगों में होता ही है, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। और ओहद में ये एक छोटा सा झटका देना इसलिए भी ज़रूरी था कि आपको, मुझे और क़यामत तक के लिए अल्लाह के रस्तों में निकलने वाले को पता लग जाए कि तुम्हें भी ओहद आनी है। और मुझे उस ओहद से बड़ा डर लगता है, हर जगह आती है। बिल्कुल, देखिए अल्लाह हम सब को झंझोड़ता है, मुझे भी। अल्लाह ताला तो नबी सल्लम के ज़रिए से क्या सहाबा को ख़बर देते थे कि तुम अभी हार गए हो, मता नसरुल्लाह, अल्लाह के नबी मदद कब आएगी, तो कहा अला नसरुल्लाह ही करीब। लेकिन अल्लाह के नबी के पास हबाब बिन अरत आते हैं और आप काबे के दीवार को टेक लगाए हुए हैं और आप उनको देखकर उठ के बैठ जाते हैं, फिर हबाब अपने जिस्म से कपड़ा उठा के कहते हैं अल्लाह के नबी देखिए अब तो जख्म खाने के लिए भी जगह नहीं है, हमारी मदद कब आएगी। तो आपने कहा कि मदद तो आएगी लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो, तुमसे पहले के लोगों को चीरा गया, दो हिस्सों में उनके जिस्म को डिवाइड किया गया, और उस तरह से जो भी आपने बात कही थी। तो याद रखे ओहद आती है, अल्लाह ना करे हमारी ओहद हमें शौत से ही पलटा दे, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी। बहुत सारे निफाक की वजह से नहीं पलटते आज, सुस्ती की वजह से, दुनिया की मोहब्बत, बज़ाहर हुब्बे दुनिया, कहीं जॉब का नाम होगा, कहीं घरदारी का नाम होगा, कहीं पढ़ने का नाम होगा, कहीं कोर्स करने का नाम होगा। आपने मैंने बस अल्लाह से एक दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे अब ना पलटाना, क्योंकि आप देखिए जो पलट के चला जाए वो तो ज़्यादा महरूम है ना, उसको तो रास्ता भी पता लग गया, तो उसने तो चख भी लिया। तो अल्लाह ताला हमें ना दुनिया में पकड़े ना आखिरत में, हम तो ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी पकड़ के काबिल नहीं, कि रब्बना ला तो आखिज़ना इन नसीना। तो ओहद पे वापस चलते हैं, किस तरीके से सहाबा जमे रहे, देखिए सबक तो निकलते ही आएंगे। जो मुखलिस होते हैं ना उनको फतह और शिकस्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 300 हट गए थे ना, लेकिन जो 700 थे ना, अब झटका कितना बड़ा पड़ा लेकिन उसके बाद फिर खड़े हो गए आगे। हमर उल असद के लिए तो अल्लाह से उन्होंने कुरान की आयतें नाजिल करवा ली, फ़कालु हसबुनल्लाह व नीमल वकील। तो ये ऊपर नीचे करना इसलिए भी होता है कि नबी के बाद अगर ज़िंदगी में कोई मसले आ जाएं तो कैसे टैकल करो। ओहद ने असल में अल्लाह के नबी की अपनी हकीकी मौत, उसको टैकल करना भी सिखाया था, ये भी लिख लें। देखिए आज एक रिहर्सल करवा दी कि नबी दुनिया से चले गए और एकदम शोर मच गया, और कोई कह रहा है कि अब हमने क्या जी के करना है, और कोई कहता है पलट चलो, कोई कहता है अबू सुफियान से पनाह मांग लो। और इतने में एक शख्स ने अल्लाह के नबी को देखा और कहा कि अल्लाह के नबी तो ज़िंदा है, तो हौसले खड़े हो गए ना। आज भी हर मैयत का सुनकर दिल में एक बार ज़रूर आता है कि नहीं ये खबर झूठी होगी। हम जब लड़कपन की उम्र में थे ना तो करीबी मौतों में से एक दो मौत हुई, तो मुझे आज भी वो फीलिंग्स याद हैं कि डेड बॉडी के पास बैठकर ना, वो जैसे अखबारों में हमने खबरें पढ़ी थी, कब्र शक हो गई, मुर्दा जिंदा हो गया, तो सारा वक्त अपने उस रिश्तेदार को ये सोच के देख रही थी कि नहीं ये भी उठ जाएगा, कफन हिल रहा है, इसके बाल हिल रहे हैं। क्या होता है, हर मरने वाले के दोबारा जीने का एहसास होता है कि ये नहीं होगा, ये झूठ है, फिर बाद में सब्र आ जाता है। अल्लाह के नबी की मौत की खबर वहाँ देकर सहाबा को उसके तकरीबन 8 साल बाद पेश आने वाले वाक़े के लिए भी तैयार कर दिया। तो बाज़ दफ़ा इंसान को अपनी ज़िंदगी में पता लग जाता है कि ये क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 7 नंबर पॉइंट है, सच्चाई और नेकी ऐसी ताकतें हैं कि जो इंसानी जौहर को अपनी तरफ खींच लेती हैं। मदीना के एक सालेह नौजवान उमर बिन सामित थे जिनका मामला मुसलमानों से हामियाना और हमदर्दाना था, लेकिन अब तक उन्होंने इस्लाम कबूल न किया था। मारका ओहद ने इनके सोए जज्बात को जगाया, ईमान लाए और तलवार लेकर चुपके से जंग में शरीक हो गए और शहादत पाई। दमे आखर बनी अब्दुल अशहल के लोगों ने अपने आदमी को पहचाना और माजरा पूछा, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से हक की हिमायत में लड़ा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि ये कैसा जन्नती है जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। इसको गौर से सुनिएगा, कैसे अल्लाह सुबहाना तआला लोगों का चुनाव करता है, आपको इस वाक़े से समझ आएगा। फरमाया कि इसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, यानी उसको अल्लाह ने अपने रास्ते में कबूल कर लिया। हमसे भी अल्लाह कुछ ऐसा ही कबूल कर ले, उम्र की चांदी तो कम हो जाती है और गुनाहों में इसको ज़ाया कर दिया। अल्लाह बस हमारी बख्शिश का कोई सामान बना ले, ये दुआ किया करें। दूसरी मिसाल, महीरेक यहूदी यानी बनी सालबा से थे, जिसने सच्ची यहूदियत का तकाजा समझते हुए नबी सल्लम की हिमायत में लड़ने का फ़ैसला किया और दूसरे यहूदियों को भी दावत दी। उन्होंने एक मुकद्दस उजर पेश कर दिया कि आज यौम सब्त है, जंग के लिए निकलना रवा नहीं। महीरेक ने कहा, इस वक्त सब्त वगैरह कुछ नहीं, यानी हफ्ते का दिन है, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। वो तन्हा ही मैदान में पहुंचा, लड़ा और जान जाने आफरीन के सपुर्द कर दी। बिल्कुल दूसरी नौयत की एक मिसाल किज़मान की भी है, इसको भी ज़रा सा सुनिए और दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। किज़मान कौन था? जिसके जहन्नमी होने की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये शख्स मुसलमानों के साथ होकर खूब लड़ा और ज़ख्मों से निढाल पाया। लोगों ने तहसीन की कि तूने तो बड़ा काम किया। लोग ज़ाहिर हमारी छोटी छोटी नेकियां देखकर ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, कभी लोगों की तारीफ से अपने आप को भुलाया ना करें कि हमने बहुत बड़े काम कर लिए। नहीं, उसने कहा, मैं तो फ़क़त कौमी हमीयत में लड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। दुआ करें फी सबीलिल्लाह कोशिशें हों, किसी और वजह से ना हो हमारी कोशिशें दीन के रास्ते की। बदनसीब ने ज़ख्मों के कर्ब के मारे खुदकुशी कर ली। अल्लाह ने इससे कुफ़ार के ख़िलाफ़ काम भी ले लिया, इसकी जान भी खप गई और ठिकाना भी जहन्नुम हुआ। अल्लाह इस अंजाम से बचाए। दुआ करें अल्लाह हमारे साथ ऐसा ना करना। देखिए मैदान जंग में शहीद हो रहा है, सहाबा देख रहे हैं, नबी भी देख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हाय जन्नती को देख लो। अपने का नहीं, और आखिर उसने अपने ही जख्मों से थक गए तो खुदकुशी कर ली। पास एक चाकू या खंजर था, उससे पकड़ा, अपनी रग काट दी। क्या पता चला कि इंजाम अच्छा होना बंदे के हक पे होने या उस पे बातिल पे होने की दलील है। अल्लाह के नबी ने भी कहा ना कि अल आमालु बिल खवातीम, खात्मों के साथ है अमाल का ताल्लुक, तभी तो खात्मा नहीं हुआ। सब अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर कर दे। फिर आठवां नुक्ता देखिए कि इस मौके पर जाहिलियत की मनफी कुव्वत भी नशे पिंदार में खूब मस्त थी। ये जाहिलियत की मनफी कुव्वत कौन है? मक्का वाले, उधर से आने वाले। और कुफर की हिमायत का जज्बा भी पूरे ज़ोर व शोर से था। ये भी एक नोट करने वाला नुक्ता है, जिस तरह हम ज़ोर व शोर से अल्लाह के रास्ते में काम करते हैं ना, कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं इसी जोश और जज्बे से शैतान के रास्तों में भी काम करते हैं। वो उनका पैशन होता है या आपका पैशन है? कुरैश का झंडा उठाने वाले अलमबरदार अगरचे एक एक करके कत्ल हो गए और किसी को जम के खड़ा रहना नसीब ना हुआ, लेकिन नए अफराद आगे बढ़कर इनकी जगह लेते रहे। आखिर जब सवाब नामी एक शख्स ने झंडा थामा तो एक ही ऐसी तलवार पड़ी कि इसके दोनों हाथ कटकर गिर गए और अलम के साथ ही सीने के बल इसके ऊपर गिरा, और ये कहते हुए ख़त्म हो गया कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। कुछ देर अलम इसी तरह खाक में पड़ा रहा। आखिर अमरा बिनत अलकमा नामी खातून बहादुरी से आगे बढ़ी और अलम उठा लिया। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुस्बत इनकलाबी कुव्वत के ज़हूर से ख़िदामत में भी कुछ देर के लिए नई रौ दौड़ने लगती है, मगर ओहद में दर हकीकत मक्का की कुव्वत ने अपना आखिरी उबाल दिखाया था। कितने साल का जुल्म था, और ओहद में अल्लाह ताला ने उनको खसो खाशाक की तरह ख़त्म कर दिया।